नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हैचिंग ट्विटर, निक बिल्टन की खोज परक व्यावसायिक जीवनी है, जो ट्विटर के आरंभ, उसके अस्थिर विकास और उसके चार प्रमुख सह संस्थापकों जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन और नोआ ग्लास के बीच बने रिश्तों का अध्ययन करती है। यह किसी तकनीकी उत्पाद की सफलता का सीधा उत्सव नहीं है। पुस्तक दिखाती है कि एक विफल होती कंपनी ऑडियो के भीतर जन्मा विचार कैसे वैश्विक संचार मंच बना और उसी प्रक्रिया में स्वामित्व, श्रेय, नियंत्रण तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के संघर्ष कितने निर्णायक बने। बिल्टन दस्तावेजों, आंतरिक ईमेलों और अनेक साक्षात्कारों के आधार पर शुरुआती ट्विटर का ऐसा चित्र बनाते हैं जिसमें रचनात्मक सहयोग और गहरी प्रतिस्पर्धा साथ साथ मौजूद है। पुस्तक का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि ट्विटर किसने बनाया, बल्कि यह समझना है कि संस्थापक होने का अर्थ कौन तय करता है। मोबाइल संदेशों की सीमाओं, उत्पाद की बदलती परिभाषा, निवेशकों के प्रभाव और नेतृत्व परिवर्तनों के माध्यम से यह सिलिकॉन वैली की उस व्यवस्था की जांच करती है जहां विचार, पहचान और सत्ता अक्सर एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ऑडियो की विफलता से ट्विटर का आकस्मिक जन्म। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ट्विटर को किसी एक व्यक्ति की पूर्ण पूर्व नियोजित खोज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका उद्भव ऑडियो नाम की कंपनी की परेशानियों के बीच हुआ, जिसका मूल काम पॉडकास्टिंग से जुड़ा था। जब उस क्षेत्र में उसकी संभावना कमजोर हुई, तब टीम को नए उपयोगी विचारों की तलाश करनी पड़ी। इस पृष्ठभूमि से समझ आता है कि स्टार्टअप अक्सर केवल दूरदर्शी योजना से नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों, उपलब्ध लोगों और असफल प्रयोगों से भी बनते हैं। इवान विलियम्स ने ऑडियो के लिए वित्त और ढांचा उपलब्ध कराया, जबकि जैक डोर्सी, नोआ ग्लास और बिज स्टोन ने उत्पाद की शुरुआती सोच और रूप देने में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। पुस्तक विशेष रूप से उस सार्वजनिक मिथक को चुनौती देती है जिसमें बाद की प्रसिद्धि किसी एक संस्थापक को पूरी कहानी का केंद्र बना देती है। ट्विटर का नाम गढ़ने में नोआ ग्लास की भूमिका और शुरुआती विचारों में सामूहिक योगदान इस प्रश्न को अधिक जटिल बनाते हैं कि वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए। बिल्टन का संकेत है कि कंपनियों की आधिकारिक संस्थापक कथा अक्सर उस समय लिखी जाती है जब सत्ता और प्रतिष्ठा पहले ही बदल चुकी होती है, इसलिए आरंभिक योगदान को बाद के पद, शेयर या मीडिया पहचान के आधार पर नहीं मापना चाहिए। दूसरा, क्या कर रहे हो से क्या हो रहा है तक उत्पाद की परिभाषा। ट्विटर के उपयोग को लेकर आरंभिक मतभेद पुस्तक का केंद्रीय उत्पाद संबंधी प्रश्न है। जैक डोर्सी, इसे मुख्यतः मोबाइल आधारित छोटे व्यक्तिगत स्टेटस संदेशों की सेवा के रूप में देखते थे। यह दृष्टि एसएमएस की दुनिया से निकली थी, जहां संक्षिप्त संदेश, तत्कालता और चलते फिरते संपर्क महत्वपूर्ण थे। इसी तकनीकी संदर्भ ने संदेशों की लंबाई सीमित रखने की सोच को भी प्रभावित किया। इसके विपरीत, इवान विलियम्स ट्विटर को वेब पर लोगों के आसपास घट रही घटनाओं और विचारों को साझा करने के माध्यम के रूप में अधिक देखते थे। सतह पर यह अंतर केवल दो प्रश्नों, क्या कर रहे हो और क्या हो रहा है का लगता है, लेकिन वास्तव में यह तय करता है कि मंच निजी गतिविधि का छोटा वृत्त बनेगा या सार्वजनिक सूचना का प्रवाह। समय के साथ ट्विटर में दोनों रूप समा गए। लोगों ने निजी अपडेट लिखे, पर समाचार, राजनीति, लाइव घटनाओं और सार्वजनिक बहस के लिए भी इसका उपयोग किया। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि उत्पाद की भाषा मामूली चीज नहीं होती। एक छोटा संकेत उपयोगकर्ताओं की अपेक्षाएं, डिजाइन प्राथमिकताएं और कंपनी की रणनीति बदल सकता है। साथ ही हैशटैग जैसे कई व्यवहार कंपनी ने ऊपर से लागू नहीं किए, बल्कि उपयोगकर्ताओं ने विकसित किए और मंच ने बाद में उन्हें अपनाया। यह नवाचार को संस्थापक नियंत्रण और समुदाय की भागीदारी दोनों का परिणाम बताता है। तीसरा, संस्थापक श्रेय, स्वामित्व और नोआ ग्लास का हाशियाकरण हैचिंग ट्विटर का सबसे असुविधाजनक विषय संस्थापक श्रेय का संघर्ष है। पुस्तक बताती है कि किसी कंपनी की सफलता बढ़ने पर उसका इतिहास केवल यादों का विषय नहीं रहता, बल्कि प्रतिष्ठा, धन, निवेश और सार्वजनिक प्रभाव से जुड़ा संसाधन बन जाता है। नोआ ग्लास शुरुआती टीम का हिस्सा थे और ट्विटर नाम से उनका संबंध व्यापक रूप से पहचाना जाता है, फिर भी वे कंपनी से जल्दी अलग हो गए। इस प्रसंग के जरिए बिल्टन दिखाते हैं कि विचार देने, नाम सुझाने या प्रारंभिक ऊर्जा पैदा करने और लंबे समय तक संगठन में शक्ति बनाए रखने के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, प्रबंधन क्षमता, संबंधों में तनाव या बोर्ड की प्राथमिकताएं उसके योगदान की सार्वजनिक मान्यता को प्रभावित कर सकती हैं। पुस्तक किसी सरल नैतिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि केवल एक पक्ष पूरी तरह सही था, बल्कि यह बताती है कि आरंभिक स्टार्टअप में भूमिकाएं अनिश्चित होती हैं, औपचारिक समझौते अधूरे हो सकते हैं और मित्रता व्यावसायिक दबाव में बदल जाती है। पाठक के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ है कि सह संस्थापकों को आरंभ में ही जिम्मेदारियों, निर्णय अधिकारों, हिस्सेदारी और बौद्धिक योगदान के बारे में स्पष्टता बनानी चाहिए। बाद में लिखी गई कॉरपोरेट कहानी अक्सर उन लोगों को केंद्र में रखती है जिनके पास मंच, पद और अपनी बात दोहराने की क्षमता होती है। चौथा, जैक डोर्सी और इवान विलियम्स के बीच नेतृत्व संघर्ष। पुस्तक का नाटकीय ढांचा जैक डोर्सी और इवान विलियम्स के बीच बढ़ते नेतृत्व संघर्ष से बनता है। डोर्सी शुरुआती मुख्य कार्यकारी बने, पर कंपनी के तेजी से बढ़ने के साथ संचालन, निर्णय गति और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे। विलियम्स ने अंततः उन्हें मुख्य कार्यकारी पद से हटाकर सीमित प्रभाव वाली भूमिका में पहुंचा दिया। यह परिवर्तन केवल व्यक्तित्वों की टकराहट नहीं था, तेज उपयोगकर्ता वृद्धि वाली कंपनी को स्थिर तकनीकी ढांचे, सक्षम भर्ती, स्पष्ट प्राथमिकताओं और निवेशकों के विश्वास की जरूरत थी। पुस्तक के अनुसार विलियम स्वयं भी धीमे निर्णय लेने और भरोसेमंद मित्रों को प्राथमिकता देने जैसी कठिनाइयों से मुक्त नहीं थे। बाद में निवेशकों के समर्थन से विलियम्स को भी मुख्य कार्यकारी पद छोड़ना पड़ा और डिक कोस्टोल ने यह भूमिका संभाली, जबकि डोर्सी फिर प्रभावशाली स्थिति में लौटे। ये घटनाएं उस धारणा को कमजोर करती हैं कि संस्थापक पद अपने आप स्थायी नेतृत्व अधिकार देता है। बोर्ड, निवेशक, मीडिया छवि और संगठन के भीतर गठजोड़ नेतृत्व की दिशा बदल सकते हैं। बिल्टन यह भी दिखाते हैं कि सत्ता से हटाया जाना व्यक्ति की सार्वजनिक पहचान को पुनर्गठित करने की प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कंपनी के इतिहास में बयान, प्रेस कवरेज और व्यक्तिगत ब्रांडिंग को निष्पक्ष तथ्य मानने के बजाय शक्ति संघर्ष के संदर्भ में पढ़ना आवश्यक है। अंत में कनेक्शन की इच्छा और सार्वजनिक मंच का अनपेक्षित प्रभाव, बिल्टन ट्विटर के आकर्षण को केवल तकनीकी सुविधा से नहीं समझते। पुस्तक में अकेलेपन और दूसरों से जुड़ने की इच्छा को एक आवर्ती व्याख्यात्मक सूत्र के रूप में रखा गया है, विशेषकर शुरुआती संस्थापकों और उन उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में जो छोटे संदेशों के माध्यम से उपस्थिति महसूस करना चाहते थे। यह विचार बताता है कि साधारण दिखने वाला प्रश्न, आप क्या कर रहे हैं, सामाजिक निकटता का अनुभव क्यों दे सकता है। लोग विस्तृत बातचीत किए बिना भी अपने जीवन के संकेत भेज और पढ़ सकते हैं। हालांकि इस व्याख्या को पूरी तरह पर्याप्त कारण मानना कठिन है। ट्विटर की वृद्धि में सेलिब्रिटी भागीदारी, मीडिया का ध्यान, तत्काल समाचार और उपयोगकर्ताओं द्वारा विकसित सामुदायिक तरीकों की भी बड़ी भूमिका थी। पुस्तक स्वयं जिस व्यापक प्रभाव की ओर संकेत करती है वह निजी जुड़ाव से आगे जाता है। मंच ने सार्वजनिक चर्चा, घटनाओं की लाइव रिपोर्टिंग और राजनीतिक संचार के तरीके बदले। इसी दोहरे स्वरूप में इसकी विशेषता है। एक ही प्रणाली किसी व्यक्ति के छोटे दैनिक संदेश और बड़े सार्वजनिक घटनाक्रम दोनों को समान तकनीकी ढांचे में रख सकती है। पाठक के लिए मुख्य समझ यह है कि मंच का घोषित उद्देश्य उसके वास्तविक सामाजिक उपयोग को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता। उपयोगकर्ता, पत्रकार, मशहूर लोग और राजनीतिक समूह किसी डिजिटल उत्पाद को उसके मूल डिजाइन से कहीं व्यापक अर्थ दे सकते हैं। निष्कर्ष में, हैचिंग ट्विटर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल मीडिया या नेतृत्व के वास्तविक मानवीय पक्ष को समझना चाहते हैं। यह पुस्तक उद्यमिता को केवल विचार, निवेश और तीव्र वृद्धि की प्रेरक कथा में नहीं बदलती। इसके बजाय यह दिखाती है कि अस्पष्ट भूमिकाएं, असमान श्रेय, व्यक्तिगत असुरक्षाएं, बोर्ड की राजनीति और मीडिया में अपनी छवि बनाने की कोशिश कंपनी की दिशा को उतना ही प्रभावित कर सकते हैं जितना उत्पाद का विचार। सह संस्थापक, प्रबंधक और निवेशक इससे यह व्यावहारिक सीख ले सकते हैं कि प्रारंभिक साझेदारी में अधिकारों और जिम्मेदारियों की स्पष्टता क्यों आवश्यक है। वहीं सामान्य पाठक समझ सकता है कि रोज इस्तेमाल होने वाले डिजिटल मंचों के पीछे संस्थागत संघर्ष और अधूरे मानवीय संबंध भी होते हैं। समान व्यावसायिक जीवनियों की तुलना में बिल्टन की पुस्तक को अलग बनाता है उसका खोजपरक, तेज गति वाला और कम महिमामंडित दृष्टिकोण। यह ट्विटर को अनिवार्य सफलता की कहानी नहीं बल्कि संयोग, सहयोग और संघर्ष से बनी संस्था के रूप में देखती है। पुस्तक में कुछ व्याख्याएं जैसे अकेलेपन को केंद्रीय प्रेरणा मानना बहस योग्य लग सकती हैं। फिर भी यही आलोचनात्मक तनाव इसे अधिक रोचक बनाता है। यह किसी एक आधिकारिक संस्थापक कथा को स्वीकार करने के बजाय पाठक को पूछने के लिए प्रेरित करती है कि इतिहास किसने लिखा, किसके हित में लिखा और किसका योगदान पीछे छूट गया। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं निक बिल्टन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।